चले गए, अंत किसको कहते और आदि किसको, समझ में नहीं आया।
कितनी बार सुना होगा और कितनी बार मुरली में सुनाया, कितनी बार
आज की जो बात
जो क्लेरिफिकेशन दिया है उसमें सुनाया। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है?
एक
सेकेंड। सौ वर्ष का तो संगम युग ड्यूरेशन लंबे से लंबा था टाइम बताया, लेकिन छोटे में छोटा संगम युग कौन सा है? एक सेकंड का, एक सेकंड में भी परिवर्तन हो सकता है। मनुष्य से बदलकर देवता बन सकता है, कहां की बात है तो सौ वर्ष का संगम। अब कोई ने बताया 1936, कोई ने बताया 1976, कोई ने बताया 2036। 18 भी तो एक वर्ष का नाम हुआ ना। मुरली में तो बोला है कृष्ण की तिथि तारीख सब कुछ बताते हैं, घड़ी सेकंड भी बताते हैं, लेकिन बाप का नहीं बताते। इसका मतलब बाप 5000 वर्ष के ड्यूरेशन में परिवर्तन नहीं होता है, उसके परिवर्तन होने की बात नहीं है। कौन परिवर्तन होता है? आत्माएं परिवर्तन होती है या बाप परिवर्तन होता है? आत्माएं परिवर्तन होती है, तो जिनका परिवर्तन होता है उनका आदि अंत कहा जाएगा। रचना का आदि मध्य अंत कहा जाता है, बाप का आदि मध्य अंत नहीं कहा जा सकता। इसलिए बाप का जन्मदिन कब हुआ, कैसे हुआ, कोई बता ही नहीं सकता। बाप कब आते हैं कब जाते हैं किसी को पता ही नहीं पड़ता, लेकिन पहले पत्ते के बारे में सबको पता चलता है।
और बाबा अपना शरीर तो नहीं है, फिर वो पता कैसे चलेगा? आत्मा का परिवर्तन जो होगा किसी का, किसी वाली आत्मा शरीर तो नहीं है।
जैसे सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं मुकर्र रथ में, तो वो निराकार राम, और वो राम जो साकार है, दोनों का एक ही रथ है या दो अलग अलग है? एक ही रथ है। ऐसे ही सृष्टि का जो आदि परिवर्तन है उसकी शुरुआत भी उसी टाइम से है, जबकि जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले बाप और बच्चे हैं सृष्टि रूपी रंगमंच के, वो एक जैसी स्टेज को पकड़ लेते हैं, और दोनों ही संपन्न स्टेज में होते हैं। इसलिए लक्ष्मीनारायण का मंदिर बनाते हैं तो लक्ष्मीनारायण का चित्र अलग भी दिखाते हैं, और नरनारायण का मंदिर भी अलग दिखाते हैं। नरनारायण का मंदिर है विष्णु की यादगार, उनके संस्कार मिलकर के आत्माओं के एक हो जाते हैं। जो बाप का संस्कार तो बच्चे का संस्कार, कौन से बाप का संस्कार? बेहद के दो बाप हैं। हाँ, जो शक्ति रूपी रंगमंच में मनुष्य शक्ति का बाप है उसके संस्कार, और जो शक्ति रूपी रंगमंच पर इस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है उसके संस्कार, दोनों के संस्कार एक ही शरीर में मिलकर एक होंगे या शरीर अलग अलग होंगे? एक ही शरीर होगा।
विष्णु तो जगदम्बा का पार्ट बजाया
है,
ब्रह्मा का तो पार्ट जगदम्बा का है।
ब्रह्मा का पार्ट जगदम्बा का है, लेकिन जगदम्बा जिसे कहा जाता है वो शरीर का नाम हुआ या आत्मा का नाम है? वो जगदम्बा डब्बे का नाम पड़ता है। उस डब्बे के द्वारा जो महाकाली का पार्ट है, जो चंद्रमा महाकाली के सर पर दिखाया जाता है, वो ही चंद्रमा है जो शंकर के मस्तक पर चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाता है। लेकिन सात्विकता और तामसीपने में अंतर हो जाता है। एक होता है कंस्ट्रक्शन और एक होता है डिस्ट्रक्शन। ज्यादा प्राप्ति किस में होती है? कंस्ट्रक्शन से प्राप्ति होती है और डिस्ट्रक्शन से प्राप्ति नहीं होती है। हैं दोनों ही कल्याणकारी।
बाबा जो ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय नाम पड़ा है तो ब्रह्म कुमारी विद्यालय कहने से तो ब्रह्मा के कुमारियों का नाम पड़ा था ना, वो तो ब्रह्मा साबित नहीं होते ना वो।
अरे कुमारी किसकी, बाप की या अम्मा की?
तो ब्रह्मा मौजूद है ना बाबा?
हाँ बाबा मौजूद है, इसीलिए तो साबित होता है कि अम्मा ने बाप को नहीं पहचाना, या बाप को पहचाना तो भी उसको पीछे कर दिया, अपने को आगे कर दिया। भारतीय परिवार में कोई साध्वी माता होती है, विधवा न हो क्या, जो ऐसी माता होती है जिसका पिता भी साथ में परिवार में मौजूद हो, तो वो अपने को आगे बढ़कर के नाम बताती है या पति का भी साथ में आगे लेती है?
ब्रह्मा का भी साबित नहीं होता ना बाबा?
कहाँ
ब्रह्मा विद्यालय अगर होता तो भी ब्रह्मा साबित होता, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बना।
कुमारी किसकी?
ब्रह्मा की कुमारी।
ब्रह्मा की कुमारी जैसे एंड संस होता है क्या, तो संस जब नाम लगा दिया तो संस किसके? बाप के। इसी तरह यहाँ ब्रह्मा कुमारी शब्द है, इससे साबित होता है कि कुमारी है तो किसकी कुमारी है? ब्रह्मा की, लेकिन प्रजापिता की नहीं। इसलिए करेक्शन कराया मुरली में, लेकिन बच्चा बुद्धियों की समझ में आने वाला नहीं वो करेक्शन। आधी बात समझ में आई, आधी बात समझ में नहीं आई। विद्यालय का नाम तो चेंज कर दिया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिख दिया, लेकिन अपने अपने नाम के आगे प्रजापिता नहीं लगा सके।
बाबा दादी का जन्म हो गया है, तो बाप दादा ने कहा हो गया है, लेकिन मगर आत्मा तो जन्म लेती नहीं है, तो उसने हाँ हो गया है, इसे बेहद में जन्म लिया ऐसा ही आप बता।
जब ब्रह्मा सरस्वती की बात आई थी पहले और पूछने वालों ने पूछा था कि मम्मा बाबा का जन्म हुआ, तो संदेश में क्या जवाब दिया? हाँ हुआ। कहाँ? नेपाल में हुआ। तो क्या उनका स्थूल जन्म हुआ था? है कौन सा जन्म हुआ? वेद में क्या उसका अर्थ लगाया गया? हाँ एडवांस पार्टी में जैसे यहाँ अर्थ लगाया गया मम्मा बाबा का, कि बेहद का नेपाली संगठन है, ऊंची स्टेज में रहने वाला है पहाड़ों पर, वहाँ मम्मा बाबा की आत्मा उन्हें जन्म लिया।
बीके वाले को समझते हैं
ना? बीके वालों को ज्ञान मिलेगा तभी समझेंगे या पहले से समझेंगे? ज्ञानी आत्मा ज्ञान की बात को समझेगी या ज्ञानी आत्मा ही समझेंगी? अज्ञानी को कहा जाता है धक्के खाने वाली बुद्धि, कभी इधर धक्के खाएगी ये बात सही है, कभी उधर धक्के खाएगी नहीं ये बात सही है। और ज्ञानी, ज्ञानी को ठिकाना मिल जाता है। जब एक ठिकाने पे बुद्धि लग गई कि बाप हमको समझाने वाला है, तो बुद्धि धक्के नहीं खाती है। तो जैसे वहां मम्मा बाबा के लिए ये बात लागू हुई, अर्थ बदल गया, उस अर्थ को उन्होंने नहीं समझा, ऐसे यहां भी है। मुन्नी बहन ने अगर पूछा और जवाब देने वाले अव्यक्त बाप दादा ने जवाब दिया, तो जवाब का सही अर्थ मुन्नी ने नहीं समझा। जब एडवांस में आएगी तो मुन्नी की बुद्धि में, नन्नी मुन्नी बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी। अब उस बात को आप दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं कि मुन्नी बहन ने पूछा, इससे क्या साबित होता है कि आपकी बुद्धि में भी बात नहीं बैठी है। तो फालतू की बात में बुद्धि संगठन में सबका डिस्टर्बेंस हो रहा है। और ये बात तो अव्यक्त वाणी का जो क्लेरिफिकेशन है, जो संदेश का क्लेरिफिकेशन है, वो पहले ही एडवांस की वाणियों में क्लियर कर दिया है कई बार, कुमार का दादी के शरीर छोड़ने के बाद। अब रोज की मुरली सुनेंगे ही नहीं तो क्लेरिफिकेशन बुद्धि में बैठेगा भी। और
सती त्रेता में सोच रहा और द्वापर कलयुग में रात बताई थी, द्वापर कलयुग में रात दिन दोनों होता है, सत्युग में भले सोच रहा होता है दिन।
हद की बात है, बेहद की बात है,
वो आदमी भी ऐसे होते
हैं। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं कि बेहद का बाप हद के बच्चों से हद की बातें करते हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आप हद की बात बोल रहे हैं, बेहद की बात बोल रहे हैं?
दोनों बातें,
दोनों बातें, दोनों बातें। जिस सतयुग के लिए आपने कहा कि वहाँ दिन और रात होता है या नहीं होता है?
नहीं होता है, दिन ही दिन होता है।
तो वहाँ तो चंद्रमा होता ही नहीं है, रात होने की बात ही नहीं है। जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पे ऐसा टाइम भी होता है 6 महीने का कि लगातार दिन ही दिन रहता है, ऐसे ही जब 6 महीने का दिन हो सकता है तो आधा कल्प का दिन नहीं हो सकता? हो सकता है।
द्वापर कलयुग में दिन रात दोनों होते हैं।
द्वापर कलयुग में जो रात होती है वो निश्चय अनिश्चय की निशानी है। क्या भक्तों को अभी अभी निश्चय होता है भगवान है, भगवान का साक्षात्कार हो गया, समझते हैं भगवान है, लेकिन भगवान होता नहीं, वो स्थूल दिन और रात की बात है। और यहाँ है बेहद के दिन और बेहद की रात की बात। जब बेहद का ज्ञान सूर्य बुद्धि में प्रगटा हुआ है, पहचान बुद्धि में बैठी है, तो क्या है? दिन है। और जब अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो रात हो जाती है। ब्रह्मा का दिन भी है तो ब्रह्मा की रात भी है।
बाबा संगम युग में भक्तों को अभी तक भक्ति का फल बाबा दे रहे हैं, तो भी उसकी भक्ति तो बढ़ जाएगी ना?
हाँ,
तो मतलब भक्ति मार्ग पूरा नहीं होगा
संगम युग में?
भक्ति का अगर फल देना शुरू किया संगम युग में भी,
हाँ,
तो भक्ति मार्ग बढ़ता जाएगा, खत्म नहीं होगा?
नहीं, उस आत्मा के लिए जिसको भक्ति का फल मिल गया उसकी भक्ति बढ़ेगी या भक्ति फा हो जाएगी? दूसरे लोगों से कनेक्शन थोड़े ही है, जिसको भगवान मिला, जिसको भगवान से ज्ञान मिला उसकी बात है, औरों को तो ज्ञान मिला ही नहीं, भगवान मिला ही नहीं,
ज्ञान की बात नहीं,
बिना ज्ञान के भक्ति कैसे खलास होगी? ज्ञान भक्ति और वैराग कहा जाता है, कहा ही इसलिए जाता है कि ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग हो जाता है। ज्ञान मिला और भक्ति खलास, नहीं तो ज्ञान मिला ही नहीं, भक्ति मार्ग के आडंबरों में कोई फंसा हुआ है लगातार, और सारे ही भक्ति मार्ग के आडंबरों को अनुगमन करता है, तो कहेंगे उसको ज्ञान मिला? मिला ही नहीं। और तो ज्ञान मिलने से भक्ति खलास होती है, ऐसे नहीं कह सकते कि ज्ञान मिलने से भक्ति बढ़ जाती है।
ये जो 500 करोड़ की आबादी है, जब खलास हो जाएंगे तभी परिवर्तन होगा, आत्मा के अंदर परिवर्तन।
आत्मा के अंदर परिवर्तन पहले होता है या पांच तत्वों के अंदर परिवर्तन पहले होता है? है? हाँ, जो आत्माओं का परिवर्तन, आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा के द्वारा होता है। परमपिता परमात्मा जो आत्माओं का बाप है, वो चैतन्य आत्माओं अर्थात मन बुद्धि का परिवर्तन करता है ज्ञान से। और इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो इस मनुष्य सृष्टि पर ऑलराउंड पांच तत्वों में लिप्त होकर के पार्ट बजाता है, जब वो संपन्न स्टेज धारण करता है तो प्रकृति के पांच तत्वों का परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं प्रकृतिपति। क्या ज्योति बिंदु शिव को प्रकृतिपति नहीं कहेंगे? किसको कहेंगे? जो मनुष्य सृष्टि का पिता है वो पहले प्रकृतिपति बनता है, फिर नंबरवार बच्चे भी बनते हैं। प्रकृति है पांच तत्वों का संघात, उन पांच तत्वों का परिवर्तन जब तक नहीं किया है तब तक सृष्टि का परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। तो 2036 में आत्मा का परिवर्तन होगा, प्रकृति का परिवर्तन होगा, या दोनों का परिवर्तन होगा? है? दोनों का परिवर्तन 2036 में होगा। है? आत्माओं का परिवर्तन भी 2036 में हो जाएगा। पांच तत्वों के संघात का परिवर्तन भी 2036 में होगा, लेकिन सारी सृष्टि पर एक साथ नहीं, नंबरवार होगा। आत्मा का परिवर्तन 2018 से ही हो जाएगा। और प्रैक्टिकल में देखने में आवेगा, शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जावेगी। अभी आत्मा में कमजोरी आ जाती है बीच बीच में, संग का रंग क्या लग जाता है, चाहे वो राम की आत्मा हो चाहे कृष्ण की आत्मा हो, सबको संग का रंग लगता है। भले झटपट जैसे साइकिल पर चढ़ने वाला झट से उठ के खड़ा हो जाता है, अपने को चेंज कर ले जल्दी वो अलग बात, लेकिन संग का रंग सबको लगता है। लेकिन ऐसी भी एक स्टेज आवेगी आत्मा की, नंबरवार, कि संग का रंग लगना बंद हो जाएगा। तो उसे एक की बात भक्ति मार्ग में उठा ली है सबके लिए, आत्मा सो परमात्मा। और
वो नक्षत्र किसको कहते?
एक सितारे होते हैं स्वयं चमकते हैं, उनको और किसी के चमक की जरूरत नहीं होती है। और एक सितारे ऐसे होते हैं दूसरों की चमक से चमकीले बनते हैं, स्वयं प्रकाशित नहीं होते। जो सितारे स्वयं प्रकाशित होते हैं आसमान में ध्यान से देखें, वो यूं 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 टिमटिमाते रहते हैं। और जो टिमटिमाते नहीं है, एक जैसी स्थिर रोशनी रहती है, उनके ऊपर नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। तो नक्षत्र हैं स्वयं प्रकाशित होने वाले, और जो ग्रह हैं वो नक्षत्रों के प्रभाव से प्रकाशित होने वाले हैं।
नक्षत्रों के प्रभाव में और ग्रहों के प्रभाव में क्या अंतर है?
कहाँ नक्षत्र है और कहाँ ग्रह है, वास्ट अंतर है। और फिर कहाँ उपग्रह है, चंद्रमा। उपग्रह ग्रह का हिस्सा होता है, नक्षत्र है वो ऐसे होते हैं जैसे सूर्य,
इस नक्षत्रों के हिसाब से जो अंगूठी वगैरह लोग पहनते हैं तो इसका
अंगूठी में सब नक्षत्र नहीं है,
अलग अलग नाम रूप की अंगूठी,
वो ग्रहों की यादगार है। उसमें जो बीच में रखा हुआ है वो ही स्वयं अंधेरे में प्रकाशित होता है रात्रि में।
कोई नो
तो स्पेशल हीरा है। कोई भी हीरा हो अगर असली हीरा होगा तो अंधेरे की रोशनी में भी चमकेगा। अब वो कोहिनूर हीरा हो या कोई भी हीरा हो। और दूसरे जो रतन है वो अंधेरे में स्वयं प्रकाशित नहीं होते।
अंत में एक शरीर में अनेक आत्माएं प्रवेश करेगी तो सभी आत्माओं में प्रवेश न होगी या कोई न चाहता है कि मेरे शरीर में कोई न आवे, ऐसा भी हो सकता है।
आत्मा कमजोरी के काम करे, श्रीमत के बरखिलाफ चलती रहे तो श्री श्री 108 शिव बाप उसको कंट्रोल करेगा, या मनमत पर चलने वाली मनुष्य मत पर चलने वाली आत्मा दूसरों से कंट्रोल्ड होती रहेगी। अरे जो बाप की मत पर चलेगा ही नहीं तो बाप क्या करेगा, लगाम ढीली छोड़ देगा, दूसरों को मौका मिल जाएगा। चलो तुम ऊंचते ऊंच के कंट्रोल में नहीं आते तो आओ हमारे अड्डे में, दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए है? जो ऊंचते ऊंचे बाप मिला है उस ऊंचते ऊंचे बाप की मत पर ही चलना है, न मन मत चलाना है और न मनुष्यों की मत पर चलना है। कमजोर आत्माएं होती हैं वही तिनके का सहारा लेती हैं, पावरफुल आत्माएं पावरफुल का सहारा लेती हैं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ये भी पावरफुल आत्माएं परमधाम से आती है। तो नंबर वार नारायणों में प्रवेश करती है या अव्वल नंबर नारायण में प्रवेश कर सकती है?
भक्ति मार्ग में कोई अनुष्ठान या पूजन करते हैं
आप तो
पवित्र कन्याओं की पूजन करते हैं?
नहीं नहीं, हर अनुष्ठान में कन्याओं का पूजन नहीं होता है।
कहीं कहीं करते हैं ना।
जो देवियों का पूजन होता है नवग्रह जब होते हैं, वो क्या था, नवरात्रि जब होती है तो देवियों का पूजन होता है। वो देवियों के पूजन में माताओं को नहीं आमंत्रण देते हैं। किसको आमंत्रण देते हैं? कन्याओं को आमंत्रण देते हैं। और जितने कम उम्र की कन्या होगी उसका चुनाव पहले करते हैं, जितनी ज्यादा उम्र की कन्या होगी उसको छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कम उम्र की कन्या में प्योरिटी की संभावना जास्ती होती है। हाँ फिर आगे
कुमारों की पूजा।
भारत में कन्याएं सुरक्षित वातावरण में ज्यादा रखी जाती हैं या कुमारों को सुरक्षित वातावरण में ज्यादा रखा जाता है? कन्याओं को, क्योंकि स्त्री जाति एक ऐसी जाति है, अगर उसकी सुरक्षा नहीं की और वो विभिचारिणी बन गई तो उसका खून बदल जाता है। पुरुषों का खून बदलता नहीं लिंग भेद के कारण। लिंग भेद की बात है ना, जो कन्याएं माताएं हैं उनमें खून समा जाता है और पुरुषों के अंदर खून समाता नहीं है, संग का रंग का उतना नहीं समाता। हाँ, बुद्धि से याद आता है, दृष्टि में समा जाता है, लेकिन खून पेट में नहीं इकट्ठा होता। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि स्त्रियां जहां बिगड़ जाती है वहां सारा परिवार सारा देश नेस्त नाबूद हो जाता है। सवाल का जवाब मिला है? हाँ जी।
वो मुरलीधर से प्यार बना मुरली से प्यार,
जिसने मुरली को धारण कर लिया है, धर लिया है, मुरली धर्म है ना, जिसने मुरली को धर लिया है, जैसे कहते हैं गंगाधर, किसको धर लिया? गंगा को धर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। ऐसे ही मुरलीधर, जिसने मुरली को पूरा पूरा 100% धारण कर लिया। मुरलीधर को याद करना, मुरली को धारण करने के बराबर है। मुरली से प्यार किया माना मुरलीधर से प्यार किया। भगवान जब इस सृष्टि पर आता है वो तो सेवा है, निराकार है, वो आकर के हमको क्या देता है? ज्ञान माना मुरली। ज्ञान माने क्या? ज्ञान माना वो ज्ञान नहीं जो ब्रह्मा के मुख से सुनाया, उसका तो नाम रख दिया है मुरली भक्ति मार्ग में। जैसे भक्ति मार्ग में बांसुरी नाम दिया है, बांस की बांसुरी, ऐसे ही ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में दादा लेखराज के मुख से जो वाणी निकली उसको कहेंगे मुरली। भक्ति मार्ग की बात है, लेकिन असली मुरली क्या है? मुरली असली वो है जो मुरली का एक वाक्य का तालमेल मुरली के हर वाक्य के तालमेल से मेल खाए। एक वाक्य भी या अथवा एक वाक्य के अर्थ का भी दूसरे वाक्य के अर्थ से क्रॉस न होता हो। चाहे जितना भी मुरली को मोड़ ले, लेकिन अर्थ एक ही निकले।
अष्ट देवों में पहले नंबर का जो मनता होगा और आठवें नंबर का जो मनता होगा उसमें आठ गुना फर्क होगा।
आठ गुना
फर्क होगा।
फर्क होगा, लेकिन दो गुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना ऐसे नहीं कह सकते। अगर इतना फर्क हो तो सब कोई पहचान लेवे क्या कि आठ की लिस्ट में कौन कौन आने वाले हैं। इतना हल्का फर्क होता है फिनिशिंग का जो सबकी बुद्धि में बैठ नहीं सकता।
बाबा अष्टदेव में कौन से देव से
श्रेष्ठ
है? अष्टदेव में कौन से देव से?
अरे देवताओं में कौन सा देव श्रेष्ठ है? अभी पूछने की दरकार रह गई? अच्छी तरह से नहीं समझा कि देवताओं में कौन सा देवता श्रेष्ठ है?
अष्टदेवों में श्रेष्ठ कैसे है ये पता
है?
अष्टदेवों में कैसे श्रेष्ठ है?
अष्टदेव में ऐसे श्रेष्ठ है कि वो पहले से ही बाप है, जो बाकी देव है उन देव का वो बाप है, जैसे मुरली में बोलते हैं बाबा बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, अच्छी चाल चलने में भी तुम्हारा बाप है, और माया के चपेटे में जब आकर के तुम माया की मत पर जो नाचते हो वो डांस करने में भी तुम्हारा बाप है।
रेगुलर क्लास करते हैं उसके लिए कहा है कि मुरली से प्यार मानो मुरली दर से प्यार, अगर आकर के जो प्रति सोते हैं उसके लिए कहेंगे कि मुरली से प्यार
आकर के
सोते हैं क्लास में मुरली के समय तो उसको कहेंगे मुरली दर से प्यार।
जो सोते हैं उससे ये साबित नहीं होता कि उनके ऊपर पापों का बोझा इतना ज्यादा चढ़ गया है कि अब वो मुरली सुनने की और बाप से दृष्टि लेने की उनकी तथा ही नहीं, अब हकदार ही नहीं है।
मुरली सुनते समय नींद नहीं आती, योग में आती है
तो प्रिया वो अपना अपना हिसाब किताब अलग अलग।
हद के सागर से हद का नमक निकलता है, हद के सागर से कौन सा
निकलता है? वाणी खारी लगती है या नहीं लगती है ब्रह्मा कुमारियों को? जो तथाकथित ब्राह्मण है उनको ज्ञान सागर के जो सागर का जल है वो खारा लगता है या मीठा लगता है? एडवांस पार्टी वालों को मीठा लगता है, इसलिए बोला सागर खारा भी और सागर मीठा भी। वो जो स्थूल सागर है उसमें भी कोई कोई धाराएं ऐसी बह रही हैं जो सीधी बर्फ से पानी आता है, बर्फ के पहाड़ों से, और एकदम मीठा पानी होता है।
खारे का और खार का क्या मीठे पानी पीने वाले फिर खार में
खार में क्यों?
खारे गांव में क्यों?
अच्छा फरक्काबादी नमकीन बहुत मशहूर है, फरक्काबाद के नमकीन में खार में क्या विशेषता है जो बाबा ने मुरली में इतना बोला हुआ है? फरक्काबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। अरे जो बहुत मीठा होगा वो बहुत खारा भी होगा, जो बहुत खारा होगा वो कभी टाइम आने पर बहुत मीठा भी होगा। खारा माने पतित और मीठा माने पावन।
जो ग्यारह के समय सोते हैं उनका परिवर्तन कभी
स्वचिंतन करना चाहिए या पर चिंतन
उसके कारण हमको भी नींद आती है।
फिर तो नींद अगर आ जाती है तो उसको कंट्रोल करने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ, ज्यादा पुरुषार्थी हुआ, या जो नदी की धारा बह रही है उस बहती हुई धारा में खुद भी तेजी से बह जाने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ? कोई ऐसे भी प्राणी होते हैं जो नदी की धारा बहती है तेजी से तो भी ऊपर जाते हैं, और बाप ऐसे प्राणियों को गले से लगा के रखता है। हम नहीं ऐसा पुरुषार्थ कर सकते।
बाबा सांपों में सांप की क्या विशेषता है? जो संकेत के लिए भी नाग सांपों में
विकारी बहुत विकारी माना जाता है,
और सांप में तो और भी सांप है।
सांप में
सांपों में और भी सांप है, नाग में क्या विशेषता?
सांपों में और क्वालिटी है, फिर नाग में क्या विशेषता है?
विष ज्यादा होता है, फन जिसमें होता है फनीला नाग उसमें विष ज्यादा होता है, तीखा विष होता है। और सांपों का बस जिनका जिन्हें नाग जाति के नहीं कहे जाते हैं उनका विष इतना तीखा नहीं होता है।
एक मूल्य बोला है कि शंकर के वीर्य से विष्णुतंड पैदा हुए
है जी,
तो ये बाबा क्या?
जो बिच्छु टिंडन पैदा हुए वो किस बात के निमित्त बने? है नहीं किस विनाश के निमित्त बने ना, तो विनाश जो है वो जरूरी है या जरूरी नहीं है? अगर वो बिच्छू टिंडन पैदा न हो तो इन राक्षसों की दुनिया का सफाया नहीं हो सकता। उन बिच्छू टिंडनों में सबसे पावरफुल कौन है? जो आत्मा सब असुरों का खलासा कर देती है, है? महाकाली। जैसे रुद्रमाला का फर्स्ट मणका बाप के सबके नजदीक है, ऐसे लास्ट मणका भी सबसे जास्ती नजदीक है।
बाबा शास्त्रों में तो लिखा है कि भाई शंकर अभोग विरिया, मतलब भोग करते हुए भी उसकी शक्ति सिद्धि होती है।
तो आपने क्या समझा, आपने क्या समझ लिया, आपने कुछ और समझ लिया क्या है?
सवाल कर रहा है,
जिसका वीर स्खलन बराबर लगातार होता रहेगा वो ज्ञान में डब्बा गोल हो जाएगा या ज्ञान में तीखा होगा? आपने क्या समझा है? अरे क्या समझा, मुख से बोलो ना।
डब्बा गोल हो
जाएगा, डब्बा गोल हो जाएगा। ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञानी वो जिसके प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान समाया हुआ हो। ज्ञान का अर्थ गृहस्थी ज्यादा समझेंगे या सन्यासी समझेंगे? और दुनिया का बड़े से बड़ा गृहस्थी कौन है? जगत पिता, इसको कहते हैं शंकर। इसलिए शंकर का नाम शिव के साथ ऐड किया जाता है। जमदे जामदे नहीं होता, पुरुषार्थ करने में अभ्यास करने में टाइम लगता है। जब याद का अभ्यास तीखा हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, तो इंद्रियां अपना भोग छोड़ देती है। नहीं समझ में आया? जैसे आंख देख रही है लेकिन मन कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है, फिर उस आदमी से पूछा जाए तुमने क्या देखा, इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां सामने से निकल गई, तुम्हारी बुद्धि कहां थी? तो कहेगा हमने कुछ नहीं देखा। क्यों ऐसा हुआ? आंख खुली रही, उसने अपना भोग स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि मन दूसरी जगह लगा हुआ था। ये मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस, मन बुद्धि और संस्कार का जो बाप है परमपिता परमात्मा शिव, वो ही सिखाता है। उसे एक के अलावा और कोई राजयोग नहीं सिखा सकता, और वो एक ही मुकर्र रथ में आके सिखाता है। न ब्रह्मा के द्वारा सिखाता, न विष्णु के द्वारा सिखाता, न कोई धर्म पिताओं के द्वारा सिखाता। तो बिच्छू टिंडन अधूरे अभ्यास की स्टेज में पैदा हुए, या जब वो एक सेकंड आ जाएगा तब पैदा हुए? है? जब अधूरा अभ्यास है तो पैदा होते हैं। जब संपन्न स्टेज है, संपूर्ण ब्राह्मण, तो संपूर्ण देवता, फिर बिच्छू टिंडन पैदा होंगे क्या? अरे प्रजापिता भी तो ब्रह्मा है या नहीं है? वो विष्णु नहीं बनता क्या? ब्रह्मा पांच है, पहला नंबर ब्रह्मा कौन? प्रजापिता। तो पहले नंबर में विष्णु कौन बनेगा? प्रजापिता।
अकेला पुरुष राजयोग खुद सीख रहा है, क्या अकेले श्री चोला अकेला राजयोग सीख सकती है क्या?
सन्यासी कहें कि हम राजयोग सीखने वाले हैं, भगवान हमें राजयोग सिखाता है, लेकिन भगवान प्रवृत्ति मार्ग वाले गृहस्थियों को राजयोग सिखाता है या सन्यासियों को सिखाता है?
जब मानो ब्रह्मा जब तक जीवित है तब तक राजयोग सिखाए नहीं।
ब्रह्मा जिन्हें हम कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग का था, तो वो प्रवृत्ति मार्ग का था क्या? था ही नहीं। ब्रह्मा कुमारियां जो अपन को कहती हैं कि भगवान हमें प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान सिखाता है, वो प्रवृत्ति मार्ग की है क्या? है ही नहीं। तो कैसे कहती है हम राजयोग सीखते हैं? भगवान ने राजयोग प्रवृत्ति मार्ग में रह करके सिखाया है। खुद ही प्रैक्टिकल नहीं करने वाला होगा तो दूसरों को क्या सिखाएगा? जो टीचर होता है क्लास में सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ाता रहे और प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं जानता हो, तो उसे टीचर कहेंगे? वो सुप्रीम टीचर कैसे हो सकता है? नहीं समझ में आ रहा है? आ गया
बाबा। 2018 के बाद जो पेड़ है उसको राजयोग कहीं नहीं
है।
2018 के आगे का पेड़ को राजयोग कहीं?
अच्छा, क्लास में मॉनिटर होता है। अच्छा, 5 का कक्षा 9 का जो मॉनिटर होता है उसको ये नहीं कहा जाता कि इसने कक्षा 10 पास कर लिया? नहीं किया ना। फिर भी वो मॉनिटर है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने की योग्य है या नहीं है? है, है? अब आपका प्रश्न क्या है? और
बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा जब तक विष्णु नहीं बनेगा
है
तब तक जो बच्चे पैदा होते हैं वो सब बिच्छेद इंडियन की लिस्ट में।
और बच्चों को छोड़ दो, आप आ जाओ मैदान। संगी साथी बनो, सजनी बन जाओ। क्यों देवान आता है बार बार? अरे जब प्रवृत्ति मार्ग है तो जो जोड़ा है वो समान शक्ति वाला होना चाहिए, या एक जोड़ा में एक बहुत छोटा और एक बहुत लंबा हो, एक बहुत मोटा हो और एक बहुत तो ये जोड़ी कही जाएगी? है? हाँ, तो बाप ये मौका सबको देते हैं। कोई ये न कहे हमारा पार्ट क्यों नहीं, इनका पार्ट क्यों कर दिया? तो सबको मौका है, सब बच्चे सर्व संबंध बाप के साथ निभा सकते हैं। कोई उंगली न उठाए कि देखो हमको मौका नहीं दिया, नहीं तो उंगली तो उठाते हैं, है? नहीं उठाते? चाहे जगदम्बा हो, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, उंगली तो उठाते हैं ना कि हमारा पार्वती का पार्ट क्यों नहीं, हमने इतनी मेहनत की हमारा नंबर क्यों नहीं? तो बाप किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं देते।
बाबा, इंद्र सभा में जब अमृत बांटा गया,
इंद्र सभा में अमृत बांटा गया,
जब देवासुर,
हाँ, देवासुर संग्राम हुआ,
अमृत बांटा,
हाँ,
तो उस समय असुर भी देवताओं के लाइफ में अमृत पीने के लिए?
कोई कोई असुर यहाँ भी ऐसे बैठे होंगे जो खूब विकारों में जाते होंगे, खूब पतित बनते होंगे, उनकी बुद्धि में ये बात आती नहीं है कि बाप ने बोला हुआ है भाई बहन होकर के रहना है, तो भाई बहन को साथ साथ सोने की भी क्या दरकार है? दरकार है? भाई बहन है तो भावना ही नहीं है, पैदा होगी, लेकिन जबरन ऐसे करते हैं और फिर आकर के सभा में बैठते हैं कि देखे ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, देखते जानेंगे कि नहीं जानेंगे। वाइब्रेशन खराब होते रहते हैं, विपरीत वाइब्रेशन चलाते रहते हैं।
गुरु का निंदक कोई ठोर नहीं पाएगा। 98 में जो अशोक बाबा ने जिस शरीर का निमित बना पांडव भूमि माउंट आबू जाकर पांडव भूमि माउंट आबू जाकर 19 में घटा वाले कंपनी का
19 क्या
98 में अशोक बाबा ने जाके बहुत निंदा किया था माउंट आबू।
क्या किया?
निंदा किया था।
किसने?
अशोक बाबा माउंट आबू।
हाँ तो
उसके साथ क्या होगा?
उसने कोई एडवांस ज्ञान लिया है क्या? उसने कोई निश्चय पत्र लिख के दिया है क्या? उसने बाप को पहचाना है क्या? अरे जब पहचान नहीं तो ग्लानी करेगा या महिमा करेगा? उसका एक गुना पाप है और तुमने पहचाना और निश्चय पत्र भी लिख करके दिया और फिर उसके बाद ग्लानी की या ग्लानी का कुछ काम किया तो कितना गुना बोझ चढ़ता है? 100 गुना बोझ चढ़ता है। फिर दूसरों के टीचर बन जाते हैं एडवांस में तो कितना गुना चढ़ता है? फिर 1000 गुना चढ़ता है।
भाई ये ज्ञान हम किसी को समझाते हैं तो ब्रह्मा कुमारियों का जिक्र आया तो भी चल सकता है? ब्रह्मा कुमारी संस्था का उसमें जिक्र आया बताते समय तो भी कोई खराब बात नहीं है।
अगर जिक्र ही नहीं करेंगे तो कौरव कौन है और पांडव कौन है और कैसे भाई भाई हैं ये साबित कैसे करेंगे? अरे कौरव पांडव एक ही परिवार के थे या अलग अलग थे? एक ही परिवार थे।
ज्ञान देते हैं
हाँ तो उन्हें बताओ कि ब्रह्मा की औलाद दो प्रकार के, एक अधूरे पुरुषार्थी एक संपन्न पुरुषार्थ करने वाले। जो संपन्न स्टेज का पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण हैं वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की गिनती बहुत थोड़ी है, वो विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसी कैटेगरी के हैं। और जो दुष्ट ब्राह्मण है वो ज्ञान तो लेते हैं, ब्रह्मा की औलाद तो बनते हैं, ब्राह्मण तो कहलाते हैं, लेकिन कुंभकर्ण रावण और मेघनाथ जैसा पुरुषार्थ करते हैं। समझाओगे कैसे?
मतलब वही वो आत्मा अगर कोई सेंटर पर जाता है बीके पहला प्राइमरी कोर्स करने के लिए तो उसमें कोई ठीक है ना? वो भी
प्राइमरी कोर्स
बेसिक कोर्स
सत्व प्रधान नहीं होता है क्या? बेसिक कोर्स सदैव ही तम प्रधान ही होता है क्या? जो सत्व प्रधान बेसिक कोर्स है वही एडवांस कोर्स है। बेसिक कोर्स को अलग सुनाना फिर एडवांस कोर्स को अलग सुनाना ये तो ठीक नहीं है। बेसिक में एडवांस ही मिक्स करके सुना दे तो हर्जा क्या है? हमें तो सच्चाई ही सुनानी है या झूठा सुनाना है? बेसिक सुनाए तो भी सच्चा सुनाए, एडवांस सुनाए तो भी सच्चा सुनाए।
बाबा कृष्ण जब बाबा कृष्ण श्याम रहता है तो सबका रहता है, अब जब सुंदर बनता है तो एक का बनता है। तो अगर अभी संगम में ये सोचे कोई कि श्याम हो सिर्फ मेरा ही हो,
माना जब सुंदर बनेगा ना तो दुनिया का नहीं रहेगा एक का ही रहेगा, ऐसा है नहीं? हाँ
अभी अगर ये सोचे कि वो मेरा ही हो,
कोई अगर ऐसा सोचता है कि भगवान मेरा ही बन करके रहे तो ये टोटल रंग बात है। राधा भी ऐसा नहीं सोचती थी। शास्त्रों में जो राधा का पार्ट दिखाया है, जो मेंटलिटी राधा की है वो और 16,000 गोपिकाओं के मुकाबले भिन्न है। और हाथ तो उठा दो। हाँ जी
शिवरात्रि
महाशिवरात्रि। हाँ जी
हाँ, तो उधर बाबा की जो जीवन कहानी है वो लोगों को बांटेंगे तो चलेगा ना।
भले चलेगा लेकिन समझानी तो आपको ही है।
समझाएंगे
और जो झगड़ेंगे तो
बाबा है ना हमारे।
अच्छा तो बाबा को आगे कर देंगे। बाबा तो कहेगा हमारी ये तो झूठी बात किसी ने छाप दी है। बाबा स्वीकार नहीं करेंगे तब क्या करेंगे? फिर आप ही पकड़े जाएंगे।
बाबा सुनाएंगे
है ना अभी है। बाबा तो बच्चों से बात करेंगे, दूसरों से क्यों बात करेंगे? तो आप फंस जाएंगे कि नहीं? अगर आप समझते हैं कि हम नहीं फंसने वाले तो बांटो। डर लगता है तो न बांटो, नहीं लगता तो बांटो। लगता है बंबई में निर्बंधन आत्मा ज्यादा है, है? निर्बंधन होना भी बहुत भाग्य की निशानी है क्या? जिन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए हैं वो इस संगम युग में आकर उनकी निशानी क्या होगी? निर्बंधन होंगे। धन से भी निर्बंधन, तन से भी निर्बंधन, संबंधियों से भी निर्बंधन और समय के बंधन से भी निर्बंधन। संपर्की भी उनके ज्यादा पीछे नहीं पड़ेंगे। एकदम कहां जाते हैं?
कोई निर्बंधन है और ये कहे कि समय ही नहीं हम
है?
कोई निर्बंधन है
हाँ?
फिर भी कहे कि हमको समय ही नहीं है।
इसका मतलब महाकाल ने बांध रखा है, काल ने बांध के रखा हुआ है। जो कहे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, इसका मतलब देयर इज द विल देयर इज द वे है ही नहीं।
बाबा भगवान, भगवान जो शब्द है ये पद है, भगवान जो शब्द है पद हुआ, जैसे गार्ड होगा वो पद हुआ। तो उस जगह पे जो भी व्यक्ति जिसको भी जो श्रद्धा है, जिसको जो बिठाया हुआ है भगवान की पद पे, भक्ति मार्ग में देवताओं को लोग बिठा के रखते हैं तो भक्त उनके लिए वही जो है भक्ति का भाड़ा देते हैं देवता, जो उनके सामने भगवान बने बैठे हैं, जो भगवान के रूप में वहाँ बैठा हुआ है।
भक्ति मार्ग में तो सभी भगवान के रूप में बैठे हुए हैं, 24 अवतार भगवान के रूप में बैठे हुए हैं। कोई जानवर ऐसा नहीं छोड़ा जो भगवान बन के न बैठ जाए। हाँ तो
शूटिंग
यहाँ होती है। जो जानवरियत जैसे स्वभाव वाले हैं उनको भी भगवान बना के बैठाया हुआ है भक्तों ने।
दूसरों को जो दुख देते हैं
हाँ,
आज ब्राह्मणों की दुनिया में भी कुछ ऐसे हैं जो दूसरों को दुख देते हैं
है?
और कुछ ऐसे हैं जो दूसरों को सुख देते हैं
है?
आत्माओं में भी क्वालिटी है,
है?
सुख देने और दुख देने के निमित्त बनते हैं
है?
तो उसके जो सुख देता है उसके लिए ऐसा लगता है उसको कि हमारा जो है कर्ता धर्ता भगवान वही है,
माने सुख देने वाला भगवान है
उसको लगता है।
अगर कोई सुख देता है 1% तो वो भी भगवान है,
वो ऐसा मानता है सामने वाला।
हाँ हाँ, सुख देने वाला है वो भगवान है और दुख देने वाला है वो शैतान है।
शैतान है, रावण है।
हाँ रावण है, ये परिभाषा ये डिफिनेशन मान ली जाए।
डिफिनेशन की बात हम आपसे क्लियर करना चाहते हैं।
क्लियर ये करो कि भगवान सुख ही देने वाला है, सुख भगवान 1% भी दुख देने वाला नहीं। समझने वाला भल समझे, कि भगवान ने हमें दुख दिया, लेकिन जब ज्ञान खुलेगा तो उसको पता चलेगा कि भगवान एवरलास्टिंग सुख देने वाला है। जो टोटल रिजल्ट निकलता है वो सुख देने का रिजल्ट ज्यादा निकलेगा, और दुख देना सिर्फ इसलिए कि बदल जाए।
और भक्ति मार्ग में भी भगवान कहा जाता है ईश्वर एक है, भगवान एक है, लेकिन वो एक की अंगुली उठा के कोई नहीं कहता कि ये है भगवान।
तो ज्ञान मार्ग में,
और ज्ञान मार्ग में जिसने बात को समझ लिया है अंगुली उठा के कह सकता है कि ये है हमारा भगवान,
ठीक है। फिर
तो वही उसका डेफिनेशन हुआ ना, उतना
ये उसका डेफिनेशन नहीं हुआ, ये अज्ञान और ज्ञान की बात है। जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ गया वो कन्फर्म होकर के बोलेगा,
कन्फर्म होकर बोलेगा,
और जिसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है वो भटकता हुआ बोलेगा ये भी है, वो हो सकता है, ये भी है, वो भी हो सकता है, ये हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, माना बुद्धि भटक रही है।
माना भगवान शब्द जो है पद हो गया ना।
हाँ हाँ, लेकिन जो पद हो गया वो पद किसी और को नहीं दिया जा सकता,
किसी और को नहीं दिया जा सकता।
जो भगवान है वो एक ही होगा, दो या चार नहीं हो सकते, 24 नहीं हो सकते, दशावतार नहीं हो सकते।
लेकिन भक्ति मार्ग में सबने ये कहा है कि ईश्वर एक है, भगवान एक है, लेकिन अंगुली उठा के किसी ने भी ये नहीं बताया कि ये है,
इसीलिए तो भक्ति कहते हैं उसको। उसको ज्ञान कहाँ कहते हैं? भक्ति माने जिसकी बुद्धि भागती रहे, स्थिरियम न हो है? हाँ, ऊंची स्टेज में है, ये स्थूल उंगली की बात नहीं है। हाँ जी, और
मट्टी कहाँ पर खंडित होती है?
मट्टी
कहाँ पर खंडित होती है?
मट्टी कहाँ खंडित होती है? तो स्थान की ही बात है, समय की ही बात है, व्यक्ति की ही बात है। जो भट्टी का स्थान निश्चित है और भट्टी करने गए, मुरली में 7 दिन का टाइम बताया है, उस स्थान से बाहर हो गए तो भट्टी खंडित हो गई। समय की बात बताई 7 दिन की, पहले दिन जाना और 7वें दिन निकलना, बीच में 5 दिन पूरे होने चाहिए 24 घंटे के, और बीच में खंडित हो गई, टाइम से बाहर हो गए, पहले ही आ गए बाहर, तो भट्टी खंडित हो गई। जिस स्थान और समय के दायरे में वहां रहे हुए हैं, जिन व्यक्तियों के बीच में है, जिस परिवार के बीच में है, उस परिवार से झगड़ा हो गया तो अनिश्चय पैदा होगा ना, अनिश्चय पैदा होगा, बुद्धि बाहर की दुनिया में चली गई, मजबूरी में वहां टाइम पूरा कर रहे हैं, भट्टी खंडित हो गई। भट्टी तो ऐसे है जैसे 9 महीने का गर्भ होता है तो बच्चा अंदर ही रहता है, खाना दाना पानी सब कुछ अंदर मिलता है, बाहर की दुनिया एकदम भूल जानी चाहिए, इतनी खुशी बढ़ जाए कि बाहर की दुनिया याद ही ना आए। सतयुग त्रेता में भी गर्भ से पैदा होंगे, भले वो गर्भ महल कहा जाता है, सतयुग और त्रेता का जन्म द्वापर और कलयुग के जन्म से श्रेष्ठ माना जाता है, वो गर्भ महल भी कहा जाता है, लेकिन संगम युग में जो ज्ञान गर्भ है वो उससे भी श्रेष्ठ होना चाहिए या निष्कष्ट होना चाहिए? उससे भी श्रेष्ठ होना चाहिए। तो 7 दिन के फाउंडेशन में हर आत्मा अपने को देखे, उन 7 दिनों में हमारी अवस्था कैसी रही, गर्भ महल में रहे یا گرم جیل میں رہے تو دیکھنے میں آئے گا کہ جنہوں جنہوں نے وہاں مرغی کھانا سمجھا سات دن وہ ایڈوانس کے ویرودھی ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی بھی آتمائیں ہیں بھٹی کرنے والی جو وشاکھاپٹنم کے کیسے ماحول میں رہنے والی. سچ میں ماحول کیسا ہوتا ہے؟ نہ سردی نہ گرمی. ایسے ماحول میں رہنے والی آتما کمپل کی بھٹی میں جس سے میں اوپر شیڈ بھی نہیں تھا, چھت خوب گرم ہوتی تھی اور بھائیوں کو اس گرم چھت کے نیچے رہنا پڑتا تھا گرمی میں, پنکھوں کا بھی پربند نہیں تھا اتنا اور بجلی آتی بھی نہیں, اور سات دن انہوں نے اتنی خوشی میں گھمائے کہ ان کو یہی پتا نہیں لگا کہ ہم گرمی میں ہیں کہ سردی میں ہیں. ज्ञान का लेन देन मनन चिंतन मंथन में लगे रहे तो उनका गर्भ महल हुआ या गर्भ जेल महसूस की. बाबा को कभी एक दो घंटे वहां ऊपर जाके भाइयों के साथ बैठना होता है, बाबा ने महसूस भले किया अरे बड़ी गर्मी है, लेकिन उनको बिल्कुल इसका कोई गम नहीं. तो उनका गर्भ महल कहे یا گرو جیل کہیں, گرو محل ہے. ستیوگ تریتا سے بھی زیادہ شریشٹھ گرو محل ہے. تو فاؤنڈیشن جس کا اچھا اس کا سارا 84 جنم کا فاؤنڈیشن پکا ہو گیا. اتنا پکا اور مضبوط بنا کے لے جانا چاہیے.